ओ नमस्ते। सब मनुष्यों का लक्ष्य एक ही है, हम अच्छा करें बुरा करें, कि हमें खुशी चाहिए। और खुशी अगर नहीं मिलती है, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं। पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे कुछ ऐसी चीजें जो हमें, अगर खुश रहना है, कुछ चीजें हमें छोड़ने की जरूरत है और कुछ चीजें एडॉप्ट करने की जरूरत है, जिससे कि लाइफ ज्यादा इजियर हो, आसान हो। कुछ चीजें लाइफ को हम मजबूरन कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, हमारे जाने अनजाने में हम ऐसा सोच एटीट्यूड बना के रखते हैं, जिससे हमारा लाइफ अपने आप कॉम्प्लिकेटेड होता है। और वो कॉम्प्लिकेशन के कारण जितनी हमें खुशी मिलनी चाहिए, जितना हम मेहनत करते हैं, खुशी की जगह हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। और जो चीजें छोड़ने की जरूरत है, उनमें कुछ चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। सबसे बड़ी बात हमारी ईगो, दूसरा कि हमेशा राइट होने की ये ख्वाब कि मैं ही हमेशा राइट हूं, दूसरों पर कंट्रोल करने की आदतें, हर चीज को ये दूसरों पर ब्लेम करने की आदतें, और दूसरों से एक्सपेक्ट करने की जो आदतें हैं, ये चीजें हमारे खुशी पाने में मुश्किलें पैदा करती हैं। दो चार और चीजें जो हमें छोड़ने की जरूरत है, ये सब बिल्कुल सिंपल डे टू डे लाइफ की चीजें हैं। और उसके बाद क्या हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है, तो आगे है कि ये बड़ा जरूरी है कि हम हर किसी को इम्प्रेस करने की आदतें छोड़ दें। आप सबको खुश नहीं कर सकते, और जब आप सबको खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, आपसे कोई नहीं खुश हो सकता। कुछ लोगों की आदत है ना सबकी तारीफ करने की, तो ऐसे लोगों की तारीफ का कोई वैल्यू नहीं होता है। इवन आप रियल तारीफ भी करते हैं, सामने वाला सोचता है इसकी तो आदत है, वो फिर सीरियसली नहीं लेता है। अच्छा, जो लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सबकी बुराई करते हैं, फिर उनकी बुराई की भी कोई वैल्यू नहीं होती है, कि रियली बुराई कर, ये सचमुच मेरी गलतियां बताता है, भाई इसकी आदतें बुराई करना। क्योंकि जब आप हर चीज को यूनिवर्सियल कर देते हो, उसमें कोई डिलिब्रेशन, सोच नहीं, समझ नहीं, तो फिर वो मीनिंगलेस हो जाता है। इसी तरह जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, तो आप नहीं रहते हो, आप दूसरों के गुलाम बन जाते हो। और मजेदार बात है, रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलता, उल्टा ही मिलता है, आप किसी को नहीं खुश कर सकते हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि लोगों को खुश करने की, इंप्रेस करने की आदतें छोड़ें। और हम इंप्रेस करते हैं तो किससे करते हैं, हमें लगता है मैं अगर अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छा दिखूं, तो लोग इंप्रेस होते हैं। तो जो लोग हमारे चीजों से इंप्रेस्ड होते हैं, वो हमसे कभी इंप्रेस्ड नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, मतलब आपकी चीजें आपसे हट जाएं, फिर उनका इंप्रेशन खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश ये होना चाहिए कि जो आप हो वैसा रहो, और अगर आप जैसा हो वैसे उसी में आपको लोग खुश, कुछ लोग आपको पसंद कर दें तो वो आपके जेन्युइन प्रशंसक हैं, उनको आप आदर करो। पर अगर आप चाहो कि आप सबको खुश करो, सबको खुश करने के चक्कर में अपने चीजों को बदलते रहो, फिर लाइफ में आप किसी को खुश नहीं कर सकते हो। और जो रियल रिलेशनशिप होती है, उसमें नेचुरलिटी, जेन्युइन सेंस बहुत जरूरी होता है। जैसे कि टीनेज के बच्चे एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से, या शादी से पहले लड़के लड़कियां एक दूसरे को इम्प्रेस करते हैं, पर शादी के बाद भी कुछ साल तक तो आप छुपा करके कुछ कर सकते। इम्प्रेस करने का मतलब आप चाहो ना चाहो सामने वाला खुश रहो, ऐसा कुछ करते रहते हो। पर जैसे जैसे पुराने होते हैं, आपकी असलियत सामने आता है, फिर प्रॉब्लम ज्यादा होता है। इसीलिए बेटर है और जो व्यक्ति आर्टिफिशियल लाइफ जितना जीता है, इंप्रेस करने के लिए आपको आर्टिफिशियल करना पड़ता है ना, आप जितना ज्यादा आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं, सामने वाला खुश होता है नहीं होता है वो अलग बात है। आप अंदर से तो हमेशा दो लाइफ जीते हैं ना, और दो लाइफ जीतने वाला अंदर से कभी भी खुश नहीं हो सकता। इसीलिए ये आदतें चेंज कर, जिनमें ये आदतें हैं सबको खुश करने की, उनमें अगर झांक कर देखो वो परिश उनको कि वो कितने दुखी हैं, क्योंकि उनसे कोई नहीं खुश मिलेगा। अगर कोई ऊपर से खुश मिलता भी है, वो ऊपर से होता है, अंदर से नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जेन्युइन कैरेक्टर पर क्वेश्चन आता है कि ये व्यक्ति हिपोक्रेट तो नहीं, आर्टिफिशियल है, इसकी व्यवहार में आर्टिफिशियलिटी ज्यादा है। इसीलिए जेन्युइन रहे दुनिया में। दुनिया एक ऐसा मार्केट है जिसमें हर चीज के लिए कस्टमर है। आप बुरा भी हो तो भी आपके प्रशंसक मिलेंगे, अच्छा हो तो भी आपके प्रशंसक मिलेंगे, आप जैसा हो आपके प्रशंसक मिलेंगे। हाँ, आपको अगर अच्छा बनना है तो जरूर आप अच्छा बनिए, पर इम्प्रेस करने के लिए जो अच्छे बनते हैं वो आर्टिफिशियल अच्छा बनते हैं, वो अंदर से तो नहीं बन पाते ना। इसी तरह ये भी जरूरी है कि हम अपनी लाइफ, जो लोग अपनी जिंदगी दूसरों के एक्सपेक्टेशन के बेस पर जीते हैं, वो भी बहुत बड़े दुख का कारण होता है, उससे कभी खुशी नहीं मिलती है। अगर खुश रहना चाहते हो, दूसरों के हिसाब से जीना छोड़ दो, अपने हिसाब से जियो। दूसरों को कैसे कपड़े पसंद है, दूसरों को किस तरह का खाना पसंद है, वैसे तो आजकल इंडियन लोग काफी अब नेचुरल होने लगे हैं, पर अभी भी बहुत सारे वो अंग्रेजों की नकल करते हैं। और एक समय था कि हर कोई जिसको अपने आप को सिविल दिखाना है तो वो विदेशियों की नकल करते थे, खाना चम्मच में खाना, कांटे के चम्मच से खाना, आता भी ना हो तो भी। ऐसे तो समय आया कि वो चाइनीज की तरह वो दो लकड़ी वाला भी खाने की आदत डाली, जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स। पर मुझे आप खुशी है कि ज्यादातर आप जो जो जिनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, ठीक है आपको चम्मच में खाना है खाओ, पर आपको अगर हाथ में खाने में मजा आता है, सिर्फ आप इंप्रेस करने के लिए, अपने आप को ज्यादा सिविल दिखाने के लिए चम्मच से खाते हो, फिर आप आर्टिफिशियल लाइफ जीते हो और वो आपको खुशी नहीं मिलती है। आप पूरे चम्मच में पूरी थाली खाना खा लो, मजा नहीं आता है, क्योंकि आपको हाथ में खाने की मजा आता है। आप किसी अंग्रेजी की नकल करके अपने दोस्तों को इंप्रेस करने के लिए, आप अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए खाते हो, तो आप अपने खुशी के साथ कंप्रोमाइज करते हो। पर मैंने देखा इवन यहां भी बहुत सारे अब जो एस्टैब्लिश्ड लोग हैं, अब वो केयर नहीं करते, अब तो बड़ी बड़ी पार्टी में भी वो हाथ से खाते हैं अगर उनको खुशी मिलती है। ऐसा नहीं कि चम्मच से खाना खराब है या हाथ से खाना अच्छा है या कोई बुरा है, अच्छा है। बात है कि आप जो कुछ करते हो क्यों करते हो। आपको अगर मजा आता है चम्मच में खाने में खाओ, अगर नहीं आता है तो हाथ से खाओ, दुनिया जाए बाढ़ में। पर जब आप दुनिया को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, तब आप अपनी खुशी में कंप्रोमाइज करते हो। पॉइंट यह है। तो कोई भी चीज हो, दूसरों को अपने लाइफ में कंट्रोल करने के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ दूसरों के कंट्रोल में छोड़ दिया, वो कभी खुश नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरों के द्वारा उसको खुश होना है। दूसरों ने कहा बड़े स्मार्ट हो तो मैं खुश होता हूं, दूसरों ने कहा तुम बेवकूफ हो तो हमें लगता है मैं बेवकूफ हूं, दूसरों ने कहा कि तुम अच्छे हो तो मुझे लगता है मैं अच्छा हूं, दूसरों ने कहा तुम बुरे हो तो मैं मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं दूसरों के आंखों से अपने आप को देखना चाहता हूं। और दूसरा कभी हमेशा एक जैसे तो बोलेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो मेरा दुख का कारण यह होता है। मुझे अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं जैसा हूं ठीक हूं या गलत हूं, तो फिर मेरी खुशी उससे होती है। ध्यान रखिए, खुशी एक बिल्कुल प्राइवेट चीजें होती है, बहुत इनर चीजें होती हैं, वो सोशियल चीजों से या एक्सटर्नल चीजों से ज्यादा फर्क नहीं करता। जब हम एक्सटर्नल चीजों से खुशी पाने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा हम फेल होते हैं। इसी तरह जो लोग लाइफ को समय के साथ, परिस्थिति के साथ, इकोसिस्टम के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते, वो भी बहुत सफर करते हैं, दुखी होते हैं। जब हम बहुत एडमेंट हैं, जिद्दी हैं कि मैं जैसा हूं वही बेस्ट है, मुझे दूसरों के, मुझे चेंज नहीं होना, वो भी खुश नहीं हो पाते। हमारे दिल्ली में एक बड़े मित्र थे, वो बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, वैसे तो प्रोफेशनली वो एक दुकानदार थे, पर खूब पढ़ाई लिखाई करते थे, खूब ज्ञान है, किताबें लिखते थे, मैगजीन में छापते थे। उनका एक अफसोस था कि वो जिससे भी बात करते हैं, लेक्चर देते हैं, बुक लिखते हैं, उनको पढ़ने सुनने वाले लोग ज्यादा नहीं होते हैं, और सुनते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं आप बड़े हेवी वर्ड्स यूज करते हो। तो उनको कहा कि आप थोड़ा आसान शब्द यूज करो। बोले मैं क्यों आसान शब्द यूज करूं, जिसको समझना है वो अपना शब्द भंडार बढ़ाए, वो अपनी वोकैबुलरी बढ़ाए, मैं क्यों अपने आप को कम करूं। अब ये जो एटीट्यूड है, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, मैं शब्दों को जानता हूं, तो मैं तो वही शब्द यूज करूंगा, सामने वाला ना समझा उसका प्रॉब्लम, वो अपना शब्द भंडार बढ़ाए, उसे होता क्या है। चार घंटे तक बोलो, सैकड़ों किताबें लिखो, कोई पढ़ने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, तो प्रॉब्लम तो आपको हो रहा है ना। फिर आप शिकायत करते हो कोई मेरी चीजें सुनता नहीं, समझता नहीं, मानता नहीं है, तो दुखी तो आप हो रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप खुश रहो, तो अपने आप को सिस्टम के जरूरत के हिसाब से बदलो, तो आपकी काम भी आसान होता है, लाइफ भी आसान होता है। अब रेगिस्तान में जाते हो तो उसकी जलवायु के हिसाब से रहना सीखो, नहीं सीख सकते हो फिर मत जाओ। आपको अगर अलास्का जाना है, अटलांटिका जाना है, ठंड के जगह जाना है, तो आप कहोगे जी मैं तो ठहरा गर्मी के रहने वाला, राजस्थान के रहने वाला, मैं तो अरब का रहने वाला, मैं क्यों गर्म कपड़े पहनूं, मैं तो ऐसे ही पहनूंगा। तो फिर आपके दो ऑप्शन है, या तो वहां जाके दुखी रहोगे या मत जाओ। अगर एंजॉय करना चाहते हो अलास्का, तो फिर वहां के हिसाब से कपड़े पहनो, वहां के हिसाब से रहन सहन सीखो। तो एक बड़ा सुंदर कहावत है ना, किसी ने कहा है कि या तो आप एनवायरमेंट को चेंज करो अपने हिसाब से, अगर एनवायरमेंट चेंज नहीं कर सकता तो तुम एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाओ। ये दोनों के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम किसी को बदल नहीं सकते हो, खुद को नहीं बदल सकते हो, पर तुम्हें जी नहीं सकते हो ना। एक बड़ा सुंदर वो थी कि एक बार राजा जब कहीं जाते थे, तो उन दिनों चप्पल वगैरह तो होता नहीं था, तो उनके कांटे चुभ जाते थे पैरों में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मुझे सलाह दें, कोई रास्ता बताएं कि मेरे पैरों में कभी कांटा ना चुभे। तो बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोगों ने अलग अलग आइडियाज दिया कि राजा जहां चले तो उनके सामने सफाई कर दिया जाए, कोई देखा जाए कांटा ना हो। तो कहां कहां, राजा तो जंगल में भी जाता है, पहाड़ों में भी जाता है, हर जगह जाता है, तो कहां कहां साफ करेंगे। किसी ने बोला कि राजा जब जाए तो उनके आगे से कालीन बिछा दिया जाए, राजा के पैर में कांटा नहीं चुभेगा। तो सब लोगों ने अलग अलग आइडियाज दे, तो कोई किसी को कोई जमने वाला नहीं था। और पूरे राज्य को कालीन से ढकोगे तो कितने पैसे खर्च होंगे, पूरे राज्य को साफ करोगे, कांटा हटाओगे तो कितने पैसे खर्च होंगे। तो राजा ने अनाउंस किया, जो मेरा ये पैरों में कांटा चुभने की व्यवस्था को ठीक कर दे, तो मैं उसको आधा राज्य दे दूंगा। तो एक विदेश से एक आदमी आया हुआ था परदेश से, और वो बेचारा गरीब था। तो उसने कहा राजा का ये समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। ये गरीब आदमी ऐसे मैले कुचले कपड़े पहन रखा है, बोले कैसे करोगे। तो बोले मुझे एक हफ्ता दीजिए। तो उसने राजा के पैर के नाप लिया, तो उसने एक जोड़े जूता बना के लाया। वो जूता बनाने वाला था, उस राज्य में किसी को पता नहीं था। तो बोले आप इसको पहनो, जहां भी जाओगे कहीं कांटा नहीं चुभेगा। राजा ने पहना, बड़ा खुश हुआ। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं, पूरे राज्य को कालीन से ढको, सब जगह साफ करो, बस अपने पैर में जूता डाल दो। मैसेज यही है, आपको खुश होना है तो दो रास्ता है, या तो सारी दुनिया को बदल डालो, कालीन बिछाओ, साफ करो, या तो अपने पैर में जूता पहन लो। जब हमें ये ज्ञान नहीं होता है कि हमें जूता पहनने से भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो फिर हम चलते कहां? दुनिया को सुधारने। दुनिया को सुधारने वाला अच्छा सुधारने नहीं, अपने जैसा बनाने, अपने अनुकूल बनाने, वो तो होने से रहा। तो फिर हम दुखी हैं, कंप्लेन करते हैं, परेशान होते हैं कि मुझे क्यों नहीं कोई सुनता, मुझे क्यों नहीं कोई मानता। क्योंकि तुम दूसरों के, तुम समाज के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से बदलते नहीं हो। तो इसीलिए जिस तरह की सिचुएशन हो, उस तरह की अगर आपके अडाप्टिव नेचर है, खान पान की, रहन सहन की, कपड़ों की, व्यवहार की, हाव भाव की, हमारे संस्कृत में बड़ा सुंदर श्लोक है ना, कि देश काल के हिसाब से आपके वस्त्र, आपके व्यवहार और आपकी भाषा और भोजन होना चाहिए। भाषा भी, आप जहां भी जाओ अगर अपनी भाषा में बोलो तो कौन समझेगा। तो इसीलिए आपको नई नई भाषाएं सीखने की जरूरत है। जिस देश में जाओ उनके हिसाब से कपड़े आप पहनते हो तो वो आपको अपने जैसा समझते हैं। इसी तरह खान पान, जिस देश में जाते हो वहां का खान पान अगर आप खाने की आदत नहीं डालते हो, तो फिर आपकी खाना हर जगह मिलेगा कोई गारंटी तो है नहीं है, तो फिर आप भूखे प्यासे रहते हो। तो कुछ चीजें हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। आपकी बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उसको कंप्रोमाइज ना करके जो चीजें आप बदल सकते हो बदलना चाहिए। सपोज आप ऐसे एक देश में हैं, अब जैसे जो रिलीजियस फील्ड में होते हैं ना, तो मंदिरों में हम प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग उतारते हैं। अब देखिए सब भोग अलग अलग टाइप के होते हैं। अब क्योंकि हिंदू धर्म भारत से निकला, तो ज्यादातर मंदिर में जो भोग चढ़ता है वो मिठाई है, फल है, केला वगैरह है, चावल है, रोटी है, चढ़ाते हैं। और कोई पंडित जी अगर कभी पिज्जा प्रसाद में चढ़ाए, वेजिटेरियन पिज्जा, घी का बना हुआ, तो कितने लोग शिकायत करेंगे, क्यों भाई मैं पिज्जा में क्या, कौन से शास्त्र में लिखा है पिज्जा और पास्ता नहीं चढ़ा सकते प्रसाद। अगर वो वेजिटेरियन हो, सात्विक हो, उसमें कोई किसी तरह का नॉन वेज का अंश ना हो, क्यों नहीं चढ़ा सकते हो? तो क्योंकि हम वो अडाप्टिव नहीं है, इसलिए हमारे रिलीजियस चीजें संकुचित होता जाता है। दुनिया में जो ये जो डोमिनेट करने वाले रिलीजियन होते हैं, जिनका जिनका मकसद है कि हम दुनिया पर राज करें, उनके प्रिंसिपल्स में, अब ये क्रिश्चियन मिशनरी जी, आप देखो भारत में आप किसी झारखंड छत्तीसगढ़ के जंगल के आदिवासियों में जाओ, आपको मिलेंगे कौन सी भाषा में उनकी बुक्स मिलेगा, संथाली में, मुंडा में, मतलब जो जो आदिवासी जिस तरह, अगर 200 लोगों की भी एक कम्युनिटी है उस भाषा में उनका बुक मिलेगा, उस भाषा में वो बात करेंगे, उनकी कपड़े पहन करके घूमेंगे। वो आप अफ्रीका के देशों में जाएं, वो जापान कोरिया में जाएं, वो अरब के देशों में जाएं, जहां भी जाएं, वो उनकी तरह उनके खान पान, रहन सहन, भाषा को अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए जल्दी से लोग उनसे इंप्रेस्ड होते हैं। हमने देखा साउथ इंडिया में, तो वो ज्यादातर जो क्रिश्चियन मिशनरी होते हैं तो वो ये भगवा कपड़े पहनते हैं, सन्यासियों के वेश में, बाल मुंडवाते हैं, दाढ़ी छोड़ते हैं, है ना, ने रुद्राक्ष माल पहनते हैं, भगवा पहनते हैं और हरिओम जीसस करते हैं। उनके जो चर्च हैं वो चर्च टाइप का नहीं होता है, वो मंदिर टाइप का होता है, ऊपर बस क्रश होता है, अंदर मूर्ति होती है ना, चर्च में थोड़ी मूर्ति होती है, पर उनको एडॉप्ट करना है क्योंकि दूसरों को ये करना है। और मंदिर में मूर्ति भी होती है, मूर्ति जीसस की होती है, और वहां पूजा पाठ भी होता है, उन्होंने मंत्र अपना बना रखा है, संस्कृत के मंत्र बोलते हैं, इसीलिए दक्षिण में रोज मतलब दुगुने चार गुने की संख्या में बढ़ते जाते हैं। अब तो पंजाब में भी भयंकर रूप से क्रिश्चियन बन रहे हैं और सब पगड़ीधारी सरदार है ना, तो सरदार क्रिश्चियन बन रहे हैं। मणिपुर त्रिपुरा में मैं एक बार गया था तो वहां एक कल्चर है वो चैतन्य महाप्रभु का वहां बड़ा प्रभाव है वैष्णव परंपरा का, तो उसमें वो एक जैसे ये नॉर्थ इंडिया में कहते हैं ना जागरण जगरता देवी जागरण वगैरह, तो ऐसे वहां अष्ट प्रहर होता है मतलब आठ प्रहर तक जागते हैं। तो नॉर्थ में तो जागरण करते रात भर देवी के भजन गाते हैं, तो वहां वैष्णव परंपरा होने से वो हरे कृष्णा हरे राम ऐसे बोलते हैं और सामने तुलसी का पेड़ रख के चारों तरफ फोटो वगैरह रखते हैं कृष्ण के वगैरह, तो वो रात भर भजन करते रहते हैं घूमते घूमते। तो देखा वो क्रिश्चियन मिशनरी वालों ने वहां भी उनकी भाषा में ऐसे ही तुलसी रखा है चारों तरफ जीसस की फोटो रखा है, तो बोलते हैं हरे कृष्ण, बंगाली में कृष्ण बोलते हैं है ना, कृष्ण जीसस को। तो वो एक ही कल्चर है त्रिपुरा मणिपुर वो वैष्णव हरे कृष्ण 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 हरे कहने का भाव है कि जिन लोगों ने समय काल परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कराया वो अपने गोल में सक्सेसफुल होते हैं, जिन्होंने अपनी जिद्दी पकड़ के बैठा नहीं हमारे पास तो अच्छा माल है हम क्यों बदलें बैठे रहो, कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो चेंज होना जरूरी है एनवायरमेंट के हिसाब से। तो अगर आप चाहते हो कि लाइफ में सक्सेसफुल हम चाहते हैं या खुश रहें तो अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। घर में सास बहू की लड़ाइयां क्यों होती हैं, सिंपल चीज है, आज तक मां सोचती थी बेटा मेरा है, बहू आ गई तो बहू बेटे के साथ लाइफ शेयर कर रही है। मां को जिस मां को ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि कल तक जो मां मां करता था अब वो पत्नी के साथ है, तो वो फिर परेशान होती है, फिर बहू को परेशान करती है, तंग करती है, उसको सौतेला उसको सौतन जैसा लगता है, उसको परेशान करने की सोचती है। होता क्या है किसी को फायदा नहीं, घर में परेशानी होती है, झगड़ा होता है, लाइफ मिजरेबल होता है, क्योंकि सास अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। मैं कल तक जैसी थी मेरा जितना अधिकार था अब वो नहीं रहा, ये रियलिटी का एक्सेप्ट करो, तुम्हारे घर में नए व्यक्ति आया है उसकी अपना अधिकार बनेगा, उसकी जगह बनेगा, वो इस घर में उसकी अपनी जगह होगी और वो जगह तुम्हारे से ही छीनी जाएगी, या एक्सेप्ट करने की जरूरत है, जो नहीं होता है वहां सास बहू लड़ते रहते हैं। तो जो लाइफ में चेंज नहीं कर सकता उसको तो दुखी होना ही होता है। इसी तरह जब हम दूसरों को जज करते हैं सुनी सुनाई बातों पर, देखी देखी बातों पर, बिना उसकी समस्या को बिना उसकी रियलिटी को समझे जाने हम उसको लेबल करने लगते हैं अपने इग्नोरेंस के कारण, तो वो भी हमारे लाइफ को ज्यादा मिजरेबल बनाता है, क्योंकि फिर आप सही लोगों को पहचान नहीं पाते हो, किसके साथ आपको डील करना है किसके साथ नहीं करना, किसके साथ दोस्ती करना है नहीं करना है, आप हमेशा रॉन्ग रास्ते पर होते हो, क्योंकि आप ऊपरी आवरण देख करके आप लोगों को चूज करते हो, आप लेबल करते हो कि इस तरह के कपड़े पहनाए तो ऐसा होगा, इस तरह के कपड़े पहनाए तो वो वैसा होगा, ऐसी शब्द बोले तो वो अच्छा होगा, ऐसा शब्द बोले तो वो बजारू होगा, ऐसा खाना खाए तो ऐसा होगा, ऐसा खाना खाए तो खराब होगा। ये जो लेबलिंग हम करते हैं, एक छोटी सी चीजें जो मैं हमेशा ये जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन आर्गुमेंट में बहुत सारे लोग बोलते हैं इग्नोरेंस के कारण बिना समझे और चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं कि नॉन वेज खाने वाले सब राक्षस प्रवृत्ति हो जाती है, उनकी प्रवृत्ति बदल जाती है, वो ज्यादा हिंसक होते हैं और वेज खाने वाले ज्यादा अहिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। और इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में कोई नहीं है, नॉन वेज वेज क्यों खाना नहीं खाना, इट्स ए डिफरेंट टॉपिक. पर ये जो लेबलिंग करना, ये बड़ी मूर्खता की लेबलिंग है. और आपको कोई समझ, आप अपने आसपास देखिए वेजिटेरियन लोगों को, वो भी उतने ही कनिंग होते हैं, उतने ही धूर्त होते हैं, इतने ही अपने भाई भतीजों के साथ लड़ाई करते हैं, जमीन जायदाद के लिए मारपीट करते हैं, जितना नॉन वेज वाला करता है. ये मेरा एक्सपीरियंस और आपका एक्सपीरियंस भी वही होना चाहिए. पर क्योंकि आपकी कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप पढ़ते लिखते नहीं, दुनिया को देखा नहीं है, तो आप लेबल करने लग जाते हैं. अच्छा ये नॉन वेज है तो इसका मतलब ये जरूर चोर डाकू टाइप का होगा, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, वेज नॉन वेज क्यों खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इसे डिफरेंट आर्गुमेंट है. पर नॉन वेज खाने वाले वेज खाने वालों से ज्यादा हिंसक होते हैं, ज्यादा क्रूर होते हैं, ये एक झूठ फिर, ये एक झूठ है. ये रियलिटी, इसमें कोई 1% भी सच नहीं है. और मैंने ऐसे हजारों लोगों को देखा जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन छोड़िए साधु संन्यासी है, पूजा पाठ करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, वो भी अपने आश्रमों में दर्जनों के हत्याएं करते रहते हैं. तो लोग हिंसक क्यों होते हैं उसका कारण अलग है, लोग दुष्ट बुरे चरित्र वाले क्यों होते हैं उसका कारण अलग है, उसके खान पान से तो कभी लेन देन नहीं. और वो व्यक्ति जो इन चीजों को समझता है, करोड़ों रिसर्च करता है, वो कभी ऐसी चीजें पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं बोलेगा. ये लोग कौन बोलते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं, सुनी सुनाई बातें और अपने अज्यूम करते हैं. ये लेबलिंग क्या होती है, एक अज्यूम करना, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को देख करके, किसी भी तरह के चीजों को देख करके अज्यूम कर लेना कि ये बुरा होगा या अच्छा होगा. हम भगवा कपड़े पहने हुए मुस्कुराते हुए व्यक्ति, धर्म का बात करने वाले व्यक्ति को सोचते हैं बड़ा अच्छा व्यक्ति होगा, ये एक लेबलिंग है. और इसका रिजल्ट क्या होता है, करोड़ों लोग सफर करते हैं. किससे सफर करते हैं, इस तरह के जो एक्सटर्नल चीजों को देख करके हम सोचते हैं ये साधु होगा, ये सन्यासी होगा, ये अच्छा व्यक्ति होगा. होता क्या है, 90% अच्छे कपड़े पहनने वाले, अच्छे मतलब धार्मिक कपड़े पहनने वाले लोग 90% बदमाश होते हैं. पर पब्लिक में परसेप्शन क्या है, धोती पहना है ना, भगवा पहना है, साधु संन्यासियों का वस्त्र पहना है, शिखा रखा है, तिलक रखा है, माला रखा है, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण भजन गाता है, ओम बोलता है, यज्ञ करता है, तो अच्छा आदमी होगा. नहीं होता ऐसा. धार्मिक कार्य करने वाला भी चोर बदमाश कनिंग होता है, ना करने वाला भी अच्छा होता है. तो ये जो लेबलिंग करने से नुकसान हमें होता है, क्योंकि आप लोगों को ठीक से पहचान नहीं पाते हो. अच्छे लोगों के साथ जो आपका भला कर सकता है उसका बुरा समझते हो, क्योंकि उसका एक्सटर्नल बिहेवियर देख करके. जो आपके साथ बुरा करेगा आप उसको अच्छा लगता है, क्योंकि एक्सटर्नल बिहेवियर देख करके. इससे हमारे लाइफ में नुकसान होता है. और ये इग्नोरेंस के एक हाईएस्ट लेवल होता है, दूसरों को लेबल करना या जज करना ऊपरी आवरण देख करके. और एक चीज होती है जो हमारे खुशी में बाधा डालता है, वो है कि हमेशा पास्ट के साथ जुड़े रहना, अपने अतीत के साथ जुड़े रहना. हिस्ट्री को जानना अच्छी चीज होती है, अपनी हिस्ट्री हो, देश की हिस्ट्री हो, सोसाइटी की हिस्ट्री हो, फैमिली की हिस्ट्री हो. हिस्ट्री जानने पढ़ने से क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि व्यक्ति क्या क्या चीजें हुई और उसमें क्या गलत था क्या सही था, उसी हिसाब से आगे की लाइफ को वो जी सके. हम रामायण क्यों पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बच्चों को बताते हैं राम के जैसा बनो, रावण के जैसा मत बनो, या दशरथ की जैसी गलती की ऐसा गलतियां मत करो, या कैकेयी ने जो गलत काम किया उसकी तरह मत करो, वगैरह वगैरह. हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं ये देखते हैं कि कुछ लोगों ने जो गलतियां की उससे हमें सीख लेने की जरूरत है, जो अच्छा किया उसे सीख लेने की जरूरत है. इसलिए हिस्ट्री जानना, अपनी हिस्ट्री को भी, मैंने अपनी लाइफ में क्या किया नहीं किया, मेरे साथ क्या घटा नहीं घटा, ये याद रखना अच्छा है. अगर उससे हम आगे की लाइफ को चेंज करने में या बनाने में हमें हेल्प मिलता है. प्रसंग ये नहीं है, प्रसंग है कि जब हम पास्ट के साथ चिपके हुए होते हैं, पास्ट के साथ चिपके हुए, 15 साल पहले मैंने इस व्यक्ति का एहसान किया था और ये इसने मुझे कुछ वापस नहीं किया, और मेरे अंदर वो कचोट रहा है, किसी आदमी ने मुझे धोखा दिया, मैंने उसका उपकार किया था, उसने मेरे लिए नहीं किया. पच्चीस साल पहले मेरे साथ या मेरे फैमिली के साथ किसी ने कुछ किया था, मुझे वो याद है और मैं उस गुस्सा को या रिवेंज लेने की भाव को लेकर बैठा हुआ हूं। तो ये जो पास्ट होते हैं, मैं बचपन में बा जवानी में मैं बहुत धनी था, ज्ञानी था, और आज मेरे दोस्त मेरे से ज्यादा धनी ज्ञानी बन गए और मेरे पास ना पैसा है ना ज्ञान है, मैं मूर्ख हूं। पर तब भी मैं अकड़ में हूं कि क्योंकि मैं 25 साल पहले बहुत अच्छा था तो उसी को बेच रहा हूं। तो जो लोग प्रेजेंट में बेकार हो जाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा पास्ट की जो जुगाली करते हैं, जुगाली समझते हैं। जैसे गाय जो होता है ना, खा लेता है घास वगैरह, तो जो सोता रहता है, जो काम नहीं है, तो वो फिर लेटा लेटा उसको निकाल करके जुगाली करता है। जो लोग प्रेजेंट में कुछ करते धरते नहीं है, या प्रेजेंट जिनका पास्ट से खराब होता जाता है, वो फिर पास्ट को जुगाली मतलब उसी को याद करते हैं या दुनिया को सुनाते रहते, मैं ये था, मैं वो था, मैं ये था। लोगों की तुम्हारी पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है कि तुम अभी क्या कर रहे हो और अभी भी मेरे साथ क्या कर रहे हो। जी मैं वो हूं वो हूं, ठीक है, अगर मेरे साथ तुम गंदा व्यवहार कर रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट कि तुम क्या थे या हो, मैं तुम्हारे से अच्छा बनूं, हो ही नहीं सकता। पर लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, हमारे लाइफ में कुछ बदलाव नहीं होता है। तुम्हें पास्ट में जो कुछ हुआ उससे कुछ सीखना है, सीखो। अगर कुछ नहीं सीख सकते हो तो उसको गिव अप करो, छोड़ो। पास्ट को छोड़ना ही आगे बढ़ने की रास्ता होता है, क्योंकि लाइफ जो होता है ना, लाइफ हमारा गोल नहीं होता है, ध्यान रखिए। लाइफ एक जर्नी है ना, आप पैदा होते हैं, कहां आपकी लाइफ ठहरती है। पैदा होने के साथ साथ आप बढ़ते हैं, बचपन आया चला गया, जवानी आई चली गई, प्रौढ़ता जब आप 40, 50, 60 के हो जाते हैं आई चली जाएगी, बुढ़ापा आएगी चली जाएगी। ये आती है, जर्निंग है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। तो जिस स्टेज पर आप हो उस स्टेज को एंजॉय करो। आप 50 साल के हो, आप 15 साल की उम्र में क्या एक्सपीरियंस था उसी को रोज रोज याद करके परेशान हो या खुश हो तो काम नहीं चलेगा। आप 50 साल की एज की लाइफ को जीने की आदत डालो। 25 साल में आप 10 रोटियां खाते थे, इतने पहलवानी करते थे, अब हो गया, आप 70 साल के हो, एक्सेप्ट करो, बॉडी में आप वो नहीं है, आपको उसी हिसाब से अपने आप को बदलो। पास्ट के साथ चिपके रहने से भी हम दुखी होते हैं। इसी तरह जो अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट मतलब मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी चलाना अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी लेनी भी अच्छी बात है, घर है, बढ़िया घर में रहना अच्छी बात है, बच्चे अच्छे हैं ये अच्छी बात है, सब कुछ आपका अच्छा है, अच्छी बात है। परेशानी कहां है, जब इनके साथ आप चिपक जाते हैं। गाड़ी अच्छी है, गाड़ी चलाओ, एंजॉय करो, गाड़ी का सुख लो, बढ़िया गाड़ी है तो। पर आप गाड़ी चलाते कम हो, रोज गाड़ी को 4 बार धोते हो, उसमें कोई दाग ना लगे कोशिश करते हो, क्यों? ये अटैचमेंट है। और कहीं हल्की की खरोंच आई तो 2 दिन की नींद खराब होती है। गाड़ी चलाया कम, गाड़ी चलाने का मजा कम लिया, वो गाड़ी से अटैचमेंट के कारण रोज दुखी हो। गाड़ी को कोई ठोक तो नहीं देगा, गाड़ी कहीं चोट नहीं आ जाएगा, इस चिंता में तुम्हारी जिंदगी आधी गुजर जाती है। तो वो गाड़ी तुम्हें सुख देने वाला कम बना, दुख देने वाला, नींद खराब करने वाला ज्यादा बना। तो गाड़ी का एक एग्जाम्पल है, वही चीज आपके बच्चे हो, घर हो, धन हो, पोस्ट हो, कुछ भी हो, इतना ज्यादा चिपको मत कि उसमें थोड़ी सी खरोंच आया नहीं कि आपकी नींद खराब हुई। और ज्यादातर लोग जो स्मार्ट होते हैं वो चीजों को यूज करते हैं, जो स्टूपिड होते हैं चीजों से अटैच्ड होते हैं। यूज करो, चीजें यूज करने के लिए होती हैं, यूज करो, उससे अगर कुछ सुख मिलता है तो सुख लो, पर अटैच्ड होने से दुख ज्यादा मिलता है। वो कोई भी हो, इंक्लूडिंग हमारे बच्चे हो, पति या पत्नी हो, घर हो, कपड़े हो, कुछ भी हो। इसी तरह ये अटैचमेंट के साथ होता है क्लिंजिंग, चिपके रहना। हम चिपके क्यों रहते हैं किसी चीज के साथ, कोई भी चीज हो, इनसिक्योरिटी के कारण होता है। हम जगह नहीं बदलते, हम घर नहीं बदलते। मुझे याद है जब वो छोटे थे तो हमारे यहाँ काफी बाढ़ आता था, तो बाढ़ आता था तो सबको सरकार बोलता था कि सब ऊंचे जगह पर चले जाओ, अभी भी बहुत सारे जगह बाढ़ होता है तो घर छोड़ के आपको ऊंची जगह पर जाना पड़ता था। तो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग होते थे वो छोड़ने को तैयार नहीं, जी पानी आएगा घर डूबने, जो मेरा 40 साल 50 साल का घर है, मेरे इतने धान है, गेहूं है, पैसा है, गाय है, मैं इनको छोड़कर कैसे जाऊं। मेरे भाई जान पहले बचाओ, ये जो क्लिंजिंग है, चिपके रहना है, उससे हम बाढ़ में मरने को तैयार हैं पर घर छोड़ने को तैयार नहीं। ये तो चलो गरीब है, अनपढ़ है, ये एग्जाम्पल दिया, पर ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे या धनी लोग नहीं करते। हम जिस चीज में चिपक जाते हैं वो चिपकना सिर्फ इनसिक्योरिटी का रीजन होता है, चीजों को छोड़ने से। वो कहते हैं ना, अगर आप मुट्ठी भरे हुए रखोगे, सपोज आपकी मुट्ठी में कुछ भी है, पैसा है, रेत है, कुछ भी है, तो आप कभी नई चीजें नहीं ले सकते हो। नई चीजें लेने के लिए तो हाथ खोलनी पड़ती है, हाथ खुला होगा कुछ आएगा तो वो आप एंजॉय करोगे, हाथ बंद रखोगे कुछ भी नहीं आएगा, जो है वो धीरे धीरे खिसकता जाएगा नीचे से। खुला हाथ क्या है कि बिना चिपके जो कुछ है उसको एंजॉय करो, नई चीजों को आने का मौका दो। कालिदास बड़ा वो बड़े संस्कृत में बड़े कवि हुए, तो उसमें उनका एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। श्लोक का भाव होता है, पुराना होने पर सब चीजें अच्छी नहीं होती है। हमारी एक आदत है ना कि हमारे जमाने में पढ़ाई अच्छा हुआ करती थी, हमारे जमाने में बच्चे अच्छा हुआ करते थे, हमारे जमाने में लोग अच्छा हुआ करते थे, वो पुराने जमाने में लोग ज्यादा अनिष्ट होते हैं। तो उस पर कालिदास कमेंट करते हैं 2500 साल पहले कि पुराना होने पर सब चीजें अच्छी नहीं होती है, नया होने पर सब चीजें खराब नहीं होती हैं। समझदार लोग नए अच्छे हो तो भी एक्सेप्ट करता है, पुराना खराब हो तो छोड़ देता है। चिपकने वाले कौन होते हैं? पुरानी चीजें क्योंकि सब अच्छी हैं, नई चीजें बेकार हैं। ये दुनिया में, ये सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, सोसाइटी में भी देखिए। आप में से बहुत सारे लोगों को पता, जब राजीव गांधी यंग थे, प्राइम मिनिस्टर बने, तो तब कंप्यूटर आया भारत में नया नया, और पूरे देश में ये सालों तक स्ट्राइक, हड़ताल सब बना, क्योंकि ये कंप्यूटर आया, ये हमारा नौकरी छीनेगा, वो करेगा, हिंदुस्तान वो विदेशी बन जाएगा, सरकार लाया। आज देखिए कंप्यूटर आने के कारण रोजगार कितना बढ़ा, हमारे आपके लाखों करोड़ों बच्चे आईटी इंडस्ट्री में कहां कहां पहुंच गए, देश में भी कितना बदलाव आया। क्यों? हम चिपके हुए हैं। हमें अगर ये कंप्यूटर रिवोल्यूशन नहीं होता, आज भी हम टाइप कर रहे होते हैं, है ना? वो पुराने टाइपराइटर से टाइप कर रहे होते हैं, उसी से काम चल रहा होता है, सब मैनुअली हुआ होता है। तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो जिसकी जरूरत नहीं इजीली छोड़ते हैं, नई चीजों को अडॉप्ट करते रहते हैं, तो लाइफ में सुख होता रहता है। कंपनियों में आप तो सब पढ़े लिखे और कंपनियों में काम करते हैं, कॉर्पोरेट फील्ड में आप जानते हैं, किसी भी कॉर्पोरेट फील्ड में कंपनी को सर्वाइव करने के लिए जो कंपनी हमेशा 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद क्या चेंज होने वाला, उसको अभी से प्लानिंग करता है, नई नई फील्ड में इन्वेस्ट करता है, वो कंपनियां सरवाइव करते हैं। आप कितना भी बढ़िया चीज बनाते हो, आज के डेट में कितना भी वो फैशन हो, उसका एक एक्सपायर डेट होता ही होता है। सोचिए जब बजाज स्कूटर चलते थे भारत में, है ना, तो और वो बुलेट बाइक चलते थे, अगर वो कंपनियां वही चिपके होते बजाज स्कूटर में, आज वो बर्बाद बंद हो गए होते। तो वो समय के साथ बदलते हैं। स्कूटियां निकाली लड़कियों के लिए, अलग अलग तरह की चीजें निकाली, रेडियो स्टेशन, जो टीवी आया सोचे रेडियो बंद हो जाएगा, रेडियो बंद हो जाता अगर वो वैसे ही होते, रेडियो वालों ने अपने आप को चेंज किया, एफएम लाए, एएम की जगह एफएम लाए, अब एफएम भी उतने ही पॉपुलर है जितना टीवी पॉपुलर है। तो जब आप चिपक जाते हैं ना, तो आपकी बर्बादी पक्का है। जब आप समय के साथ बदलते हैं, तो फिर आपके नए नए जोश के साथ आप खुशी ढूंढते हैं। इसीलिए वो पर्सनल लाइफ हो या कम्युनल लाइफ हो, सोशल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको चिपकना आपके दुख का कारण जरूर होता है। और दूसरा लास्ट करेंगे, हमारे लाइफ में दुखों का और एक कारण होता है, जब हम हर चीज, जो लोग जितना एक्सक्यूजेस देते हैं, आप किसी को बताओ, माँ बाप बच्चों को बताएं, बच्चे माँ बाप को बताएं, कोई साथी आपको बताओ कि ये कमियां है, वो कमियां बताया नहीं कि उससे पहले आपके पास एक्सक्यूजे तैयार है कि मैंने ये क्यों किया, तो फिर पक्का कि आप सुधरने वाले नहीं हो और आप उस गलतियां को दोहराते जाओगे तो लाइफ में फंसोगे। तो एक्सक्यूजेस होता क्या है, एक्सक्यूजेस खुद को जबरदस्ती कन्विंस कराने का नाम है। आप दूसरों को कन्विंस नहीं करा सकते अपने एक्सक्यूजेस से, कोई नहीं, आप हमारी एक्सक्यूजेस से कोई नहीं कन्विंस होता है। कन्विंस कौन होता है, हम खुद को करते हैं। मैंने कोई गलत काम किया, रॉन्ग काम किया, जरूरी नहीं क्राइम किया, कोई गलत तरीके से किया, तो सबसे पहले मैं अपने आप को कन्विंस करता हूं ये मैंने क्यों किया। वो जो आप कन्विंस करने के लिए बात करते हैं वो 100% झूठ होता है, ध्यान रखिए। एक्सक्यूजेस 99% झूठ होते हैं। फिर उससे मैं अपने आप को कन्विंस करता हूं, अच्छा मैंने इसीलिए किया। जब आपने वो गलत काम किया, आपने उनमें से कोई भी कारण से नहीं किया, पर जब काम हो जाता है हमारे से, फिर हम अपने आप को खुद को समझाने के लिए जस्टिफिकेशन ढूंढते रहते हैं और हजारों ऐसे लॉजिक ढूंढते हैं जो खुद के मन को संतुष्ट करें। जब हम अपने मन को इल्यूशन कर देते हैं, है ना, जब अपने आप को डिल्यूटेड कर देते हैं, फिर हमें लगता है मैं दूसरों को भी समझा सकता हूं, फिर दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। सामने वाला समझता नहीं है, उसको पता है कि ये जो जितना ज्यादा एक्सक्यूजेस दे, वैसे भी ये भी बड़ी मजेदार बात है, जब हमारे कहने पर सामने वाला ज्यादा एक्सक्यूजेस दे, आप मुझे समझाएं मैं आपको समझाऊं, तो समझ लेना कि उसको समझाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं है, उल्टा वो आपके समझाने को गलत लेगा और आपको शत्रु मानेगा। तो बेटर है, समझदार लोगों को चाहिए, जब सामने वाला एक्सक्यूजेस देने लगे तो चुप हो जाओ। पर क्या है कि हमारे यहाँ समझाने वाले भी तो वैसे ही होते हैं ना, वो तो पीछे ही पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको अपना पॉइंट प्रूव करना होता है कि तू गलत हो, और उससे किसी का भला नहीं होता है। तो जो लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं उनके लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट होना मुश्किल है। इसलिए आप देखेंगे कॉर्पोरेट फील्ड में एक ही चीज देखा जाता है, काम हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ कोई सुनने को तैयार नहीं है कि क्यों नहीं हुआ। सरकारी ऑफिसर में आपको हजारों कारण बता देंगे, कोई सुनने को तैयार नहीं। काम डन है तो डन, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एक्सक्यूजेज अपने घर में रखो, इवन जेन्युइन एक्सक्यूज भी हो कोई सुनने वाला नहीं, तभी कॉर्पोरेट फील्ड में प्रोग्रेस करते हैं। हमारे घरों में भी प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। हम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि मेरे में ये कमी हो गई, मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये रॉन्ग थिंग हुआ है, ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और सबसे खतरनाक क्या चीज होती है, खतरनाक चीज होती है कि हम खुद को कन्विंस कर देते हैं। दुनिया में कोई किसी को बेवकूफ तभी बनाता है, ध्यान रखिए, जब वो पहले खुद को बेवकूफ बना लेता है। जब तक मैं अपने आप को बेवकूफ ना बनाऊं, तब तक मैं दूसरों को बना नहीं सकता। जब तक मैं खुद को कन्विंस ना करूं, मैं दूसरों को कन्विंस नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इसीलिए एक चीज मैं बार बार बोलता हूं, हर क्लास में भी बोलता हूं, कोई भी बुरा आदमी अपने लिए बुरा नहीं होता है। आपको लगता है अगर कोई चोरी करता है, खून करता है, गलत काम करता है, वो इसीलिए, अगर वो ये जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, वो नहीं करता। वो पहले खुद को कन्विंस कर लेता है, उसके पास दर्जनों लॉजिक होते हैं, मैं ये चोरी क्यों कर रहा हूं, मैं बेईमानी क्यों कर रहा हूं, मैं खून क्यों कर रहा हूं, मैं टेररिज्म क्यों कर रहा हूं, उसके पास 50 रीजनिंग है और वो कन्विंस्ड है जो कुछ मैं कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, तब वो करता है। आपको बुरा लगता है, हमें बुरा लगता है, हमें लगता है ये गलत है, पर वो कन्विंस्ड है। इसीलिए ये जो एक्सक्यूजेस होते हैं कितना खतरनाक है, इससे आप समझ पाएंगे अगर साइकोलॉजी को जानते हो तो। दुनिया में हर बुरा आदमी अपने लिए सही होता है, और वो सही कैसे होता है, एक्सक्यूजेस दे दे करके वो रीजनिंग ढूंढ लेता है कि मैं क्यों सही हूं आपके। इसीलिए हमारे में भी जो कहीं गलतियां होती हैं हम भी एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, सामने वाला कुछ भी कहे हमें लगता है मैं सही हूं तो, क्योंकि मैंने उसके लिए रीजनिंग ढूंढ लिया। ये बड़ी जरूरी है कि एक्सक्यूजेस को हम छोड़ें, लाइफ में जो गलत है गलत को एक्सेप्ट कर लें विदाउट अपने आप को इल्यूजन में डाल के समझाने की, तो फिर लाइफ में खुशी जल्दी आती है, आसान होता है। अगले बार हम जानेंगे कुछ चीजें अडॉप्ट करने की भी जरूरत है, क्या चीजें ऐसे हैं जिनको अडॉप्ट कर... ये तो हुआ क्या क्या छोड़ने की जरूरत है, अगले बार जानेंगे क्या क्या क्वालिटीज हैं। देखिए मैं जो अभी बात कर रहा हूं इनमें कोई हाई फाई बातें नहीं, कोई योग दर्शन वेदांत नहीं, बिल्कुल सिंपल डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीजें हमें छोड़ने की जरूरत है और क्या क्या चीजें हमें अगर हमारे में नहीं है तो अडॉप्ट करने की जरूरत है, तो अगले बार जानेंगे। अपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।